आस्था और भक्ति कूट कूट कर भरने की कोशिश की जाने लगी। शाही प्रश्नोत्तर में कहा गया था, ईसाइयों का कर्तव्य है कि अपने शासकों, विशेषकर नेपोलियन के प्रति वे साम्राज्य और नेपोलियन के सिंहासन की सुरक्षा के लिए प्यार, सम्मान, आज्ञाकारिता, विश्वास, सैनिक सेवा आदि सब कुछ प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहें। माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने लियो नामक स्कूल का संगठन किया जो फ्रांस में आज भी माध्यमिक शिक्षा का आधार है। नारी शिक्षा में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। उसके लिए प्राथमिक स्तर पर ही प्रबंध था। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय पर सरकार का कठोर नियंत्रण लागू किया गया। उसने स्वायत्त शिक्षा न मानकर शिक्षा विभाग को एक प्रमुख अंग बना दिया। नेपोलियन को संदेह था कि पहले बुद्धिजीवियों में ही प्रमुख विरोध मुखर हो सकते हैं, इसलिए वह सबसे पहले उन पर कठोर नियंत्रण लागू कर दिया। उसने शिक्षकों की शिक्षा का भी महत्व समझा। उसके लिए नॉर्मल स्कूल खोले गए जो आज भी फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं मानी जाती हैं और मेधावी विद्यार्थी इनमें प्रवेश पाने के लिए होड़ लगाते रहते हैं। इन संस्थाओं के संचालन के प्रति कुछ आधार निश्चित कर दिए गए थे। ईसाई धर्म की मूलभूत नैतिकता, राजाध्यक्ष के प्रति समर्पण और विश्वविद्यालय के मूल नियमों का पालन इस नई शिक्षा नीति का आधार बन गया। नेपोलियन पुस्तकालयों के महत्व से पूरी तरह अवगत था। उसने स्वयं सारा अध्ययन पुस्तकालयों के माध्यम से ही किया था। अन्य तनाशाहों की अपेक्षा वह अधिक प्रबल बुद्धि का था। उसने सामान्य रूप से अध्ययन पर नहीं विरोधी साहित्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अर्थव्यवस्था, हमारा अगला हेडिंग है अर्थव्यवस्था। नेपोलियन एक साम्राज्यवादी विजेता था, ऐसा आधुनिक अर्थ में हम नहीं कह सकते। उसमें सिकंदर और सीजर का प्रभाव देखा जा सकता है। वह सैन्य शक्ति के बल पर सफल हुआ और निरंतर सैनिक तंत्र को सुसंगठित और कार्यरत करना चाहता था। उसकी सारी अर्थव्यवस्था इस बात को ध्यान में रखकर नियोजित थी। यथासंभव वह सेना के खर्च का बोझ विजित प्रदेशों पर डालता था और फ्रांस की जनता को इस भार से मुक्त रखना चाहता था। इससे साधारण जनता में वह कुछ हद तक लोकप्रिय भी हो चला था। एक किसान ने कहा था, बुर्बो लोग फ्रांस के राजा थे, नेपोलियन हमारा राजा है। परंतु यह सच है कि उसने कृषि और उद्योग को आधुनिक ढंग से नियोजित कर साथ साथ चलाने की कोशिश नहीं की। फिर भी बंजर और रेतीले इलाकों को उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया। नहरों की ठीक ठाक व्यवस्था की गई और किसानों के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार किए गए, लेकिन भूमि सुधार और उत्पादन संबंधी कोई मौलिक सुधार नहीं हुए। सबसे बड़ा आश्चर्य यह दिखता है कि नेपोलियन ने औद्योगिक क्रांति के महत्व को नहीं समझा। इंग्लैंड में तेजी से मशीनीकरण हो रहा था और यही मशीनीकरण इंग्लैंड की शक्ति और नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण बना। परंतु वह अपनी मध्ययुगीन मानसिकता से उभर नहीं पाया। भाप से चलने वाले जहाजों के बारे में फुल्टन ने विचार विमर्श किया था, नेपोलियन ने ध्यान नहीं दिया। फ्रांस के बहुत से कारखानों में पुराने ढंग से उत्पादन होता रहा। फ्रांस में अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें ही नहीं बन पाती थीं और इंग्लैंड से युद्ध के समय नेपोलियन को कुछ चीज़ों के लिए इंग्लैंड पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मुद्रा को संगठित करने के लिए बैंक की स्थापना की गई थी। इसे नोट छापने और मुद्रा के आदान प्रदान तथा नियोजन की एक केंद्रीय संस्था बनाया गया था, लेकिन सफलता के मार्ग की ओर यह संस्था नहीं बढ़ी। बैंक में नेपोलियन के परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप बना रहा। मुद्रा को वैज्ञानिक ढंग से संचालित नहीं किया जाता था। फिर भी नेपोलियन के पारिवारिक सदस्यों के जुड़े होने से बैंक का सम्मान भी बढ़ा था। विजित देशों से प्रचुर धन मिलने की व्यवस्था ठीक थी। साधारणतः मुद्रा का सीधा संबंध आयात निर्यात से था और उस स्थिति में व्यापार में वृद्धि के आधार पर ही बेहतर हो सकती थी। फ्रांस में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस संस्था ने नियमानुसार परिवर्तन किया और फ्रांस की मुद्रा स्थिर एवं दृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अपने अर्थ मंत्री गोंदे की मदद से वह देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहता था कि लोगों को पहले से अधिक सुख की अनुभूति हो। इस कार्य में उसे शुरू से सफलता भी मिली, क्योंकि युद्धों का प्रायः बढ़ता खर्च वसूल से बाहर होता जा रहा था। कर परोक्ष रूप से लगाए जाते थे, लेकिन वास्तव में फ्रांस की अर्थव्यवस्था जर्जर होती जा रही थी। उसने पुरानी राज्य सुरक्षा नीति को फिर से लागू किया, जिसे स्लोन ने बोनापार्टिस्ट की संज्ञा दी थी। इसकी वजह से उस समय पूंजीवादी विकास के लिए उन्मुक्त वातावरण की आवश्यकता थी, वह फ्रांस को नहीं मिल सका। फलतः फ्रांस पूंजीवादी विकास की दौड़ में इंग्लैंड से पिछड़ गया और यह कमी पूरी नहीं हो पाई। बाद में नेपोलियन को पूंजीपति वर्ग का पहले जैसा समर्थन प्राप्त नहीं रहा, यही उसके पतन का कारण बना। श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है संस्कृति और सामान्य हित के कार्य। इसे एक बार और सुने, संस्कृति और सामान्य हित के कार्य। सारे फ्रांस में नहरों और सड़कों का जाल सा बिछ गया। पेरिस को प्रांतीय नहरों से जोड़ने वाली 30 सड़कें बनाई गईं। आल्पस पर्वत को चीरती हुई सड़कों ने पेरिस को रोम, मिलान और नेपल्स जैसे इटली के नगरों से जोड़ दिया। नदियों पर पुल बने। तुलो और सेरबुर्ज के बंदरगाहों का विकास किया गया। पेरिस जैसे नगर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। सेन नदी पर सुंदर और मजबूत पुल बने। पुराने राजप्रसादों, विशेषकर तुइलरी और फोटेब्लो के महलों को फिर से सजाया गया और नए महलों का निर्माण किया गया। जोसेफिन के लिए पेरिस से थोड़ी दूर पर मालमेजो नामक छोटा सा खूबसूरत महल बनाया गया। पेरिस में भव्य ला मादालैन का गिरजाघर बना। थिएटर, म्यूजियम और आवास गृहों का निर्माण हुआ। बेघर लोगों के लिए जाड़ों में रहने का प्रबंध किया गया और जनता के लिए पुस्तकालय खोले गए। अपनी हर विजय के बाद नेपोलियन चित्रों, मूर्तियों और अन्य कला वस्तुओं का भंडार लेकर लौटता था। उसके समय में फ्रांस के संग्रहालय इतने समृद्ध हुए कि आज भी वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। लूव्र के संग्रहालयों को बाहर से लाई गई वस्तुओं से इतना समृद्ध किया गया था कि आज भी यहाँ का नमूना देखने के लिए विश्व से लोग आते हैं। आज भी यहाँ का मिस्र कला कक्ष अपने ढंग का सर्वोत्तम है। उसकी गरिमा को ध्यान में रखकर भवनों और फर्नीचरों आदि के निर्माण में भी एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ, जिसे साम्राज्य की शैली कहा जाता है। फ्रांस में पहली बार साम्राज्य स्थापित था और साम्राज्य की भव्यता के अनुकूल ही निर्माण होने थे, इसलिए इस शैली में भड़कीलेपन और आडंबर था, सुरुचिपूर्ण सौंदर्य बोध नहीं। उस समय के दो प्रमुख चित्रकार दावी और एंग्रे नेपोलियन के प्रचार कार्यों में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुए थे। जैसे नेपोलियन ने वानार्ड का दर्रा एक खच्चर पर बैठकर पार किया था, लेकिन उसकी प्रसिद्ध चित्र उपलब्ध हैं जिसमें वह एक तूफानी घोड़े पर सेना का आह्वान करता आल्पस पर्वत को मानो रौंदता हुआ दर्रा पार कर रहा है। साहित्य के क्षेत्र में सातोब्रियान और मादम द स्टालिन के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय रचनाकार नहीं मिलते, और वे भी उसके विरोधी थे। वह कहता था कि साहित्य की जिम्मेदारी गृह मंत्री पर है। इससे स्पष्ट है कि वह साहित्य के विकास को निरंतर नियंत्रित रखना चाहता था, जो वास्तव में एक अवरोध था। पश्चिमी संगीत के आधार स्तंभों में से एक बीथोवेन भी नेपोलियन से प्रभावित हुआ था और उसने अपनी एक रचना का नाम हीरोइक समस्फिन रखकर उसे समर्पित किया था। लेकिन नेपोलियन ने यूरोप का दमन शुरू किया तो बीथोवेन ने वह रचना नष्ट कर दी। जर्मन भाषा का शेक्सपियर कहा जाने वाला गेटे भी नेपोलियन का आलोचक बना रहा। यह सच है कि नेपोलियन की साहित्य और कला में थोड़ी रुचि थी। उसने रूस अभियान के लिए मास्को की कठिन परिस्थितियों में भी पेरिस के ओपेरा हाउस को सजाकर उसे अगले मौसम के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। समय मिलने पर वह लेखकों और कलाकारों के बीच बैठना पसंद करता था, लेकिन यह सब किसी वास्तविक रुचि के नाते नहीं, अपने निम्न मध्यम वर्गीय कुंठा को तृप्त करने के लिए करता था। एक बार उसके वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, यदि कोई मृत फ्रांसीसी जीवित हो जाए तो चारों ओर यह दृश्य देखकर अवाक रह जाएगा। आश्चर्य से वह पूछेगा, इतना सारा निर्माण किन शताब्दियों में कितने शासकों ने किया है? उसने स्वयं जवाब दिया, था, लेकिन आप जानते हैं यह निर्माण शताब्दियों में नहीं वर्षों में हुआ है और इसे केवल नेपोलियन ने किया है। उसके इस कथन में अतिशयोक्ति है, लेकिन यह सच था कि नेपोलियन ने बहुत कुछ रचनात्मक कार्य किया, भले ही यह अहम को तुष्ट करने के लिए ही क्यों न हुआ हो। राज्य को प्रजा की नज़रों में सजाने वाले लोगों में उसे महान कहा जाता है। इसी सजावट को मूर्त रूप देने के लिए वेरसाई के सामंतों की परंपरा को एक नया रूप देकर राष्ट्रीय सम्मान लेजियो दानर जैसे भारत में पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न नामक सम्मान दिए जाते हैं की स्थापना की गई और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए लोगों को सम्मान देकर एक विशिष्ट वर्ग पैदा किया गया। आज भी फ्रांस में यह सम्मान दिया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि नेपोलियन की व्यवस्था में वास्तविक संस्कृति का विकास संभव नहीं था। आडंबरपूर्ण और सैनिक तंत्र के लिए आवश्यक निर्माण भले ही हुआ हो, उन्हें एक निम्न मध्यम वर्गीय कुंठित व्यक्ति का अपने संतोष के लिए किया गया कार्य समझना चाहिए।